भक्तिर हरो तत्पुरुषे च सख्या तदेवहारं वदमन्यसे च यशृण्वतो पैत्य रतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्याति चिरेण पुंसः भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यां तदेवहारं वदमन्यसे च यशृण्वतो पैत्य रतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्याति चिरेण पुंसः भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यं तदेवहारं वदमन्यसे च शब्द यशृण्वतः इन कथाओं को सुनने वाले का जोर से बोले अपैति दूर हो जाता है और अति अनाकर्षण वितृष्णा मन के भीतर का मैल जो हमें कृष्ण भावनामृत में और रुचि उत्पन्न कराता है सत्वं च हृदय के भीतर अस्तित्व शुद्ध्यति शुद्ध बनाता है अचिरेण तुरंत पुंसः किसी भी व्यक्ति का भक्ति हरो भगवान के प्रति भक्ति तत्पुरुषे वैष्णवों के साथ च भी सख्या संगति के लिए आकर्षण तदेव केवल वह आराम भगवान की कार्यकलाप जिन्हें सुनना चाहिए और गले में माला के समान रखना चाहिए वदः कृपा करके कहे मन्यसे आप उचित समझते हैं चेतः यदि अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के तो इन दोनों का एक साथ अनुवाद पढ़ूंगा मैं एक साथ ही है वो राजा परीक्षित ने कहा हे प्रभु शुकदेव गोस्वामी भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं निश्चित रूप से कानों को तथा मन को सुहावनी लगने वाली है इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है सामान्यतया हम भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक है कि वे स्वतः ही मन तथा कानों को सुहावनी लगती है इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की अनुरक्ति जो भव बंधन का मूल कारण है समाप्त हो जाती है मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है और भक्तों के साथ जो हमें कृष्ण भावनामृत का योगदान देते हैं मैत्री बढ़ती है यदि आप उचित समझते हैं तो कृपा करके भगवान की लीलाओं के विषय में कहें तात्पर्य जैसा कि प्रेम विवर्त में कहा गया है कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे हमारा भौतिक जगत माया है जिसमें हम तरह तरह के भौतिक भोगों की अभिलाषा करते हैं इसलिए हम तरह तरह के शरीर धारण करते हैं भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया असन्नपि क्लेशत आस देह जब तक हमारी ये नश्वर देह रहेगी तब तक अनेक प्रकार के आध्यात्मिक आधिभौतिक तथा आधिदैविक क्लेश मिलते रहेंगे। सारे कष्टों का मूल कारण यही है, जिसे कृष्ण भावनामृत का जागृत करके ही दूर किया जा सकता है। इसलिए व्यास देव तथा अन्य मुनियों द्वारा प्रस्तुत सारा वैदिक साहित्य हमें कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से लिखा गया है। यह श्रवणम कीर्तनम के जागरण से प्रारंभ होता है। श्रुण्वता स्वकथा कृष्णा। श्रीमद् भागवत तथा अन्य वैदिक ग्रंथ केवल कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए अवसर प्रदान करने के निमित्त है। कृष्ण के विभिन्न अवतार है, वे सभी अद्भुत हैं, अतएव वे हमारे उत्कंठा को जागृत करने वाले हैं। किंतु मत्स्य कुर्म तथा वराह जैसे अवतार कृष्ण के समान आकर्षक नहीं हैं, क्योंकि सर्वप्रथम हमें कृष्ण के विषय में सुनने के लिए कोई आकर्षण नहीं होता, इसलिए ये हमारे कष्टों की जड़ बन जाता है। किंतु परीक्षित महाराज विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाएं जो माता यशोदा तथा अन्य ब्रजवासियों को विस्मित करने वाली थी, विशेष रूप से आकर्षक है। कृष्ण ने अपने बाल्यकाल से ही पूतना तृणावर तथा शक्तासुर का वध किया और अपने मुख के भीतर समूचा ब्रह्मांड दिखलाया। इस तरह एक एक करके कृष्ण की लीलाएं माता यशोदा तथा समस्त ब्रजवासियों को अत्यंत आश्चर्यचकित करती रही। कृष्ण भावनामृत को जगाने की विधि है आदो श्रद्धा तथा साधु संग्रह। कृष्ण की लीलाएं भक्तों से उचित रूप से सुनी जा सकती हैं। यदि वैष्णव से कृष्ण लीलाओं के विषय में श्रवण करके थोड़ी सी भी कृष्ण भक्ति उत्पन्न की जा सके तो वैष्णव के प्रति अनुरक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में ही रुचि रखते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज मनुष्यों के लिए संस्तुति करते हैं कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं को सुने, क्योंकि ये लीलाएं मत्स्य कुर्म वराह आदि अवतारों की लीलाओं की अपेक्षा अधिक आकर्षक है। शुकदेव गोस्वामी से अधिक अधिक सुनने की इच्छा से महाराज परीक्षित ने उनसे अनुरोध किया कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं का आगे वर्णन करें, क्योंकि वे सुनने में सरल है तथा अधिक काधिक उत्सुकता जागृत करने वाली है। ओम अज्ञानतिमिरान्तश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय श्लोक का उच्चारण महाराज परीक्षित कर रहे हैं, और वास्तव में परीक्षित महाराज हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको सरलता से कैसे हासिल किया जा सकता है उसका वर्णन करते हैं। और ये जो श्लोक परीक्षित महाराज के मुखारविंद से निकला है, और इसके पहले श्लोक में वो कहते हैं एन एन अवतारेन भगवान हरिरेश्वरः, कि ऐसे अद्भुत कृष्ण हैं हरि, और उनके बारे में सुनना वास्तव में करोति कर्ण रम्यानी कानों के लिए इतना अधिक मधुर है। इस संसारिक शब्द को जब हम सुनते हैं तो हम उन शब्द ध्वनि से अत्यधिक आकृष्ट हो जाते हैं, और ऐसे शब्द ध्वनि से इस संसार के बंधन में बंध जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं अनावृत्ति शब्द, वेदांत सूत्रों का वाक्य है, कहते कि अनावृत्ति शब्द, शब्द का अनावृत्ति करना, बारंबार उच्चारण करना, आध्यात्मिक शब्दों का जो हमारे मुक्ति का या इस बंधन से छूटने का सरलतम उपाय है। इसी कारण से प्रभुपाल ने यह हरे कृष्ण मंत्र दिया है और हमें क्या कहा है, इसका अनावृत्ति करते रहो। जैसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल से उनको सिखाया जाता है एबीसी को बारंबार वो उच्चारण करते रिपीटेडली, तो उसी प्रकार से हमारे बंधन का कारण शब्द है और हमें इस संसार से मुक्त होना है तो शब्द का सहारा लेना होगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो आध्यात्मिक दिव्य ध्वनि है उसका उच्चारण जीवा से करने से और उसको अपने कानों से सुनने से क्या होगा, इस भौतिक बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। इसी कारण से परीक्षित महाराज कहते हैं कि आप क्या करो, कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करो। उनमें ये उत्साह जागृत हो गया। कैसे उत्साह जागृत हुआ, क्योंकि उन्होंने अभी अभी पूतना की लीला को सुना और सुनते ही आखिरी श्लोक में उन्होंने सुना कि ये जो कृष्ण की मधुरतम लीलाएं हैं, पूतना वध को जो व्यक्ति सुनेगा, इस मर्त्य जगत में रहने वाला प्राणी, उस व्यक्ति का आकर्षण या अनुरक्ति गोविंद में सरलता से उत्पन्न हो जाएगी केवल सुनने मात्र से। तो सुनना कोई साधारण कार्य नहीं है। हम सोचते बैठना और कानों से सुनना सबसे श्रेष्ठ कार्य है। प्रभुपाद एक बार मायापुर में प्रवचन दे रहे थे भागवतम क्लास, और उस समय देखा कुछ भक्त लोग बैठे हुए हैं, अचानक टेंपल कमांडर या कोई व्यक्ति आता है अधिकारी और उनको उठाता है, उठो चलो सेवा में चलना है। प्रभुपाद ने कहा उनको बैठने दो, डाटा क्लास के बीच में उनको श्रवण करने दो, वो कृष्ण के बारे में नहीं सुनेंगे तो वो क्या करेंगे बाकी कार्यकलाप। तो श्रवण से ही एक प्रकार से सारी चीजें आधारित है। तो जितना उचित रूप से हम श्रवण करते हैं वैष्णव के माध्यम से, गुरु के माध्यम से कृष्ण की कार्यकलापों को, उतना ही हमारे अंदर भगवान के प्रति जो तीव्र अनुराग है वो उत्पन्न होता है। और विशेष रूप से यहाँ इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण करो, वैष्णव के माध्यम से श्रवण करो। जिनके द्वारा श्रवण करने से क्या होगा, क्यों उनसे श्रवण करना है, क्योंकि उनका आकर्षण कृष्ण में है। जिसका आकर्षण कृष्ण में है उससे कृष्ण कथा सुनते हैं तो उतनी ही मात्रा में वो आकर्षण हमारे हृदय में चला जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि लाइव कृष्ण कथा सुनो, वो ऑनलाइन आने वाली लाइव कृष्ण कथा नहीं, वक्ता के सामने बैठकर उनसे श्रवण किया जाए। भागवत में इसलिए कहा गया है जब कोई महान वैष्णव जिसके हृदय में कृष्ण के लिए तीव्र अनुराग है भगवान की महिमा का उच्चारण करता है, तो क्योंकि कृष्ण कथा या कृष्ण की महिमा का उगम स्थान भगवान के चरण कमल है। कृष्ण की महिमा कहां से उदित होती है, भगवान के चरण कमल से। और ऐसे जो महान वैष्णव कृष्ण का गुणगान करते हैं तो वास्तव में चरण कमलों पर भगवान के सदैव तुलसी और आदि मकरंद आदि होते हैं, वो वहां से उड़ने लगते हैं और वहां उस वक्ता के मुख से वो सारे मकरंद जिनका स्पर्श कृष्ण के चरणों से हुआ है वो श्रोता के कानों से हृदय में प्रवेश करते हैं। हाँ, तीसरे स्कंद में या चौथे स्कंद में एक श्लोक में वर्णन है। और व्यक्ति क्या हो जाता है, शुद्ध होने लगता है। इसलिए बहुत आवश्यक है जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है महान भक्तों से श्रवण करने का, हमें दौड़ पड़ना चाहिए। हाँ, तो जैसे उत्साह परीक्षित महाराज के अंदर था ऐसे परीक्षित महाराज ने जैसे सुना श्रवणम का महत्व, तुरंत उन्होंने और ग्लोरियस श्रवणम का महत्व बोला और फिर कहा कि आप आगे की बाल लीलाओं का वर्णन करो तो इस अध्याय में तीन बाल लीलाओं का वर्णन है, एक है शकट भंजन, दूसरा है तृणावर और तीसरा है जब माता यशोदा स्तनपान कराती है तो कृष्ण आपके मुख में विराट रूप को देखती है। तो वास्तव में भक्ति विनोद ठाकुर ने सर्वप्रथम इस कृष्ण लीला को किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, किस प्रकार से कृष्ण की लीलाओं को एक साधक को देखना चाहिए उसका वर्णन किया है। हाँ, ये आसुर वासुर वास्तव में ऐसे नहीं कि उस समय में वो आसुर थे, आज भी इन आसुर आसुर सूक्ष्म रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, हम उसका अनुभव करते हैं उन आसुरों का। कई बार लोग पूछते हैं ना, मंदिर हम आते हैं तो बहुत सारे आसुरी स्वभाव के लोग मिलते हैं, मंदिर में आया और ऐसा आसुर ऐसा भक्त हमें मिला, खुशी। कई बार भक्तों से थोड़ा सा हमारा मन मोटा हो जाता है, तब सोचते हैं ये तो बिल्कुल आसुरी भक्त हैं, मंदिर में तो सारे ये होने चाहिए, सुर होने चाहिए, देवताओं के समान सारे गुण संपन्न व्यक्ति होने चाहिए। तो कहते नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि वृंदावन में भी कौन निवास कर रहे थे, निवास तो नहीं बल्कि आसुरों का प्रवेश था। तो ऐसे आसुरों को कृष्ण ने मारा है तो वृंदावन में आसुर मिल सकते, तो यहाँ क्यों नहीं मिल सकते, मंदिर में भी क्यों नहीं हमें आसुर मिल सकते। तो ये आसुरों का वध किससे हो सकता है, गोविंद देव के द्वारा हो सकता है। तो जैसे आसुर धाम में प्रवेश करते और ये मंदिर भी धाम से क्या है, अभिन्न है, तो कृष्ण ऐसे आसुरों का निश्चित रूप से वध करते हैं यदि वो भक्त या साधक कृष्ण की सहायता लेता है उन आसुरों का वध करने के लिए। इसी कारण से भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य शिक्षामृत में कृष्ण लीला का दिव्य रहस्य क्या है इसका वर्णन किया। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि वास्तव में जो कृष्ण लीला है ये कृष्ण लीला की शुरुआत में ही बोला गया है, निवृत्त तर्षे रूपगीय माना भव औषधि श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात्। वो कहते हैं कि ये कृष्ण लीला औषधि है और औषधि का पान करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, चाहे कोई भी वो प्याथी हो, आयुर्वेदिक हो या फिर एलोपैथी हो या फिर होम्योपैथी, हाँ किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि वास्तव में ये पहला जो श्लोक है निवृत्त तर्षे उसमें औषधि का वर्णन किया है और ये वास्तव में कृष्ण लीला की महिमा का वर्णन वो श्लोक करता है। तो जो बद्ध जीव है हमारे जैसे, उनके लिए कृष्ण लीला दवाई के समान है, औषधि के समान है। जैसे आचार्यों ने, वैष्णवों ने, आध्यात्मिक गुरु ने हमें कहा है इसका डोज लेने के लिए, उतना हम इसको क्या करते रहे, पान करते रहे निरंतर, नित्यं भागवत सेवया। ये दवाई को बोला गया है प्रभुपाद ने कि नित्य रूप से इस लीला कृष्ण कथा को क्या करो, इस दवाई को स्वीकार करो। और जो मुक्त जीव है उनके लिए ये कृष्ण कथा कृष्ण लीला वास्तव में आनंद से भरी हुई है, क्योंकि वो अनर्थों से मुक्त है, हम अनर्थन से युक्त है, इसी कारण से हमें ये कृष्ण कथा कृष्ण लीला मधुर नहीं लगती, बहुत अधिक कड़वाहट महसूस होती है। तो भगवान के जो गोलोक वृंदावन अपना जो नित्य धाम है उसमें कृष्ण लीलाएं करते हैं तो उन लीलाओं को नित्य लीला कहा जाता है। तो भगवान का जो आध्यात्मिक जगत में धाम है गोलोक वृंदावन, तो वो नित्य लीलाएं वहां ये सब लीलाएं नहीं है, वहां कोई आसुरवध नहीं है, वहां कृष्ण बाल्यावस्था में नहीं है, ये सारे लीलाएं कहां होती है, भव वृंदावन में। वहां स्थूल रूप से कोई आसुर नहीं है, वहां गोपिकाएं मन में ही सोच लेती है कि कृष्ण चले गए, वो विरह की अनुभूति अपने हृदय में करती है, माता यशोदा आदि का प्रेम भी उमड़ता है कृष्ण के लिए। लेकिन वही कृष्ण आते हैं अपने धाम, अपने नित्य पार्षद आदि को लेकर इस जगत में और यहाँ
भौम वृंदावन में इन लीलाओं को करते हैं जिनको नैमित्तिक लीला कहा जाता है और यहाँ ये लीलाएं घटित होती हैं। बाल लीला, आसुरों का वध आदि करना, कृष्ण का वृंदावन से मथुरा गमन करना, ये सारी लीलाएं। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम जो कृष्ण लीला से परिपूर्ण है, प्रथम स्कंद में इसकी महिमा का वर्णन करते हुए व्यास देव कहते हैं, अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे। कहते कि अनर्थों को उखाड़ कर फेंकने के लिए भागवतम का निर्माण हुआ है। तो कि इसलिए भागवतम सबसे प्रिय कोई ग्रंथ हमें हमारे जीवन में होना चाहिए तो वो भागवतम होना चाहिए। भागवतम से बढ़कर हमें किसी और से प्रेम नहीं करना चाहिए। भागवतम हम सर्वसाधारण सोचते हैं कि भागवतम चलो एक बुक है, प्रभुपाद कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं थे कि उन्होंने इतने सारे ग्रंथों को छोड़कर किस ग्रंथ को सबसे पहले पकड़ा अनुवाद करने के लिए, भागवतम को, और किसी ग्रंथ को अपने साथ ले गए, भागवतम को, किसी ग्रंथ को सारे जगत को दिया वो है भागवतम, और किसी ग्रंथ के साथ सबसे अधिक अपना समय बिताया उन्होंने जब से कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की और ये देह को छोड़ा, वो कौन सा ग्रंथ था, श्रीमद् भागवतम, भागवतम, भागवतम। और उन्होंने कोई ग्रंथ सुबह सुबह उठकर हमें इंट्रोड्यूस किया जिसका श्रवण करो वो श्रीमद् भागवतम है। और व्यास देव इतने सारे ग्रंथ उनको लिखा और बेचारे शोक मग्न थे, उदासीन थे, तो कुछ कुछ नया कौन सा ग्रंथ का प्राकट्य हुआ तो वो वास्तव में भागवतम था। इसलिए भागवतम का निर्माण हुआ है कृष्ण का गुणगान करने के लिए, ये दशम स्कंद का गुणगान करने के लिए, नव स्कंदों का वर्णन है ताकि व्यक्ति कृष्ण जो दशम स्कंद में वर्णित है उनको यथोचित रूप से समझे, उन्हीं के प्रति अपना स्वाभाविक आकर्षण उजागर करे। इसी कारण से ये भागवतम को बोला गया है अनर्थो उपशमम साक्षात चक्रे सात्वत संहिता। अलग अलग संहिता होती है ना, गर्ग ने बुक लिख दिया गर्ग मुनि ने तो उसको बोला गया गर्ग संहिता, चरक ने लिख दिया चरक संहिता। तो उसी प्रकार से ये भागवतम है सात्वत संहिता। सात्वत मीन्स डिवोटी, भक्त। तो ऐसे भक्तों के लिए ये परम संहिता है भागवतम, जिससे क्या होगा, निवृत्ति होगी। किसकी निवृत्ति होगी, अनर्थों की निवृत्ति होगी। अनर्थों से इतना डरना नहीं है, हमारे पास इतने बड़े कृष्ण हैं। हाँ, बीच में हमने पढ़ा था कि हमारे जीवन में कष्ट आता है, विपदा आती है, तो उससे इतना क्यों डरना है, क्यों उसका इतना विचार करना है। हमें अपने जीवन में विपदा जब आती है वो बहुत बड़ी तब लगती है जब हम अपने जीवन में कृष्ण को छोटा देखते हैं, बल्कि हम जितना हम अपने जीवन में कृष्ण को बड़ा रखेंगे, कृष्ण भावना को, तो जीवन में चाहे जो भी विपदा आए वो इतनी मस्तर सिर के समान छोटी लगेगी, हाँ, और उससे हम बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए कृष्ण को बड़ा देखना है, कृष्ण को अपने जीवन में बड़ा बनाना है तो कृष्ण कथा का आश्रय लेना होगा, श्रीमद् भागवतम को समझना होगा या सीखना होगा। और वास्तव में भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि कृष्ण लीलाओं को साधकों को विशेष दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए। उनको इन आसुरों की लीलाओं को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये आसुरगण कोई काल्पनिक वस्तुएं थी, नहीं, ये आसुर उनके साथ ये वध आदि है उनका वर्णन, ये क्या है, सत्य घटना है। ये सत्य, जैसे कोई धारावाहिक होता है ना टेलीविजन में आता है उसमें लिखा जाता है, ये काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, लेकिन वास्तव में भागवतम सत्य घटनाओं का वर्णन है जो कृष्ण के साथ, या कृष्ण ने वृंदावन में ये सब सबों का, इन विशेष लीलाओं का वर्णन किया है। तो ऐसी ये जो कृष्ण कथा है जिसका वर्णन करते हुए परीक्षित महाराज कहते हैं इस श्लोक में, वो कहते हैं यश सुनवतो वो कहते हैं इसको सुनने से, किसको सुनने से, किसको सुनने से, कृष्ण के कार्यकलापों को सुनने से, क्योंकि आगे आगे पुतना के बारे में सुना था। वो कहते हैं यशुन्मतो अपैति अरति, हाँ ये पहला छह श्रवणम के गुण वो बता रहे हैं इस श्लोक में। छह चीजें होगी कृष्ण की इन लीलाओं को व्यक्ति सुनेगा, हाँ लेकिन उतने उत्सुकता के साथ सुनना होगा, उतनी लालसा के साथ सुनना होगा। हम तो सुनते आ रहे हैं, हाँ जब कथा शुरू होती है तो पहले विचार आता है खत्म कब होगी, हाँ तो वो कहते हैं अपैति अरति। अरति का मतलब है अनाकर्षण, एक होता है आकर्षण अनाकर्षण। अभी कृष्ण की कथाओं में कृष्ण के कार्यकलापों को सुनने में हमारा कोई आकर्षण नहीं है, इसलिए इस अनुवाद में प्रभुपाद लिखते हैं लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं। ये शब्द बहुत अच्छा लगा मुझे, आनाकानी, हम नहीं सुनना चाहते। तो अरति का मतलब है, अनाकर्षण का मतलब है कि पहले ही सोच लेना कि अरे जाना पड़ेगा क्लास में, या उपस्थिति दिखाना कि हाँ मैं उपस्थित था, या फिर कृष्ण कथा श्रवण करने में नींद आ जाना, और बहुत सारे जो आकर्षक चीज है संसारी उनका स्मरण हो जाना, वो सब क्या है अपैति अरति। तो जब सुनता है व्यक्ति तो पहली चीज है परीक्षित महाराज कहते हैं ये अनाकर्षण दूर हो जाता है। अपैति का मतलब है दूर होना और अरति का मतलब है अनाकर्षण। तो पहली चीज है कि अनाकर्षण दूर हो जाता है, और दूसरी चीज वो कहते हैं वितृष्णा। तृष्णा होती है ना प्यास, और किसी चीज की हमें विशेष प्यास होती है, उधर किसी से लगा होता है और किसी से विशेष लगा होता है। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भोगों के साथ है, इस भौतिक भोगों में कि हमें किस भोग, कुछ भोगों की तृष्णा है और कुछ भोगों की क्या है विशेष तृष्णा है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं ऐसा करने से क्या होगा, ये विशेष भोग की तृष्णा है उसका उन्मूलन हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। और तीसरी चीज वो कहते हैं, तीसरा शब्द याद कहते सत्वम च। सत्वम च का मतलब है हृदय के भीतर जो सत्व है या शुद्ध सत्व है उसकी स्थापना होगी, क्योंकि भागवतम के पहले स्कंद में वास्तव में प्रभुपाद कहते थे अपने शिष्यों को जिसने भी संन्यास ग्रहण किया है उसको भागवतम के पहले स्कंद का दूसरा अध्याय कंठस्थ होना चाहिए। उसका नाम है भूल गया उसका नाम क्या है, प्योर डिवोशनल सर्विस। हाँ तो प्रभुपाद कहा करते थे उसमें ये सारे श्लोक पाए जाते हैं। तो उसमें ये वर्णन आता है तदा रजस तमो भावा काम लोभा दयच्छये, कि क्या होगा ऐसे भागवत कृष्ण के कथाओं को सुनने से, तदा रजस तमो भावा ये सारे भाव दूर हो जाएंगे। हम में रोज कई प्रकार के भाव जागृत होते हैं, हाँ तो ये भाव तमोगुण का भी एक भाव है, रजोगुण का भी, विक्स का भी एक भाव है, तो ये सारे भाव क्या हो जाएंगे रजो तमो आदि के दूर हो जाएंगे और सत्वम की स्थापना होगी। और वो कहते परीक्षित महाराज चौथी चीज शुद्धति। शुद्धति का मतलब है शुद्ध बन जाएगा, नष्ट प्रायेशो अभद्रेशो नित्यं भागवत, भागवतम का श्रवण करने से नित्य, इसलिए कृष्ण कहते हैं श्रुण्वतासो कथा कृष्ण, कहते कृष्ण की कथा सुनने से क्या होगा पुण्य श्रवण कीर्तना रुदंतस्थ ही अभद्राणि विधुरुति सुरुत्सता, हृदय के सारे अभद्र दूर हो जाएंगे। आगे वो कहते हैं, वो कहते हैं शुद्धति अचिरेण पुंसा। अचिरेण शब्द का अर्थ है तेजी से, चाहे जितना भी मल क्यों ना हो क्या होगा शुद्धति शुद्ध बन जाता है तुरंत। पुंसा मीन्स व्यक्ति, और वो कहते हैं
आखिरी की दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं ये कृष्ण कथा, और वास्तव में प्रभुपाद ने इतना उद्यम किया है अपनी नींद को त्याग दिया है, अपने शरीर आदि का ध्यान नहीं रखा, केवल हमें भागवतम देने के लिए। लेकिन हम भागवतम को खोलना ही नहीं चाहते। भागवतम के अलावा बहुत चीजों को अपना हृदय खोल के बिठाते हैं, लेकिन भागवतम के लिए स्थान नहीं है। तो कहते क्या होगा, परीक्षित कहते इन लीलाओं भागवत के कृष्ण कथा को सुनने से भक्ति हरो। हाँ, चौथी चीज या पांचवी चीज है, हरे में भक्ति जागृत होगी, किसी और में नहीं। कौन से हरे? कृष्ण, कुर्मा, मत्स्य, वराह, नरसिंह, राम आदि में नहीं। किसमें? वृंदावन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, नंद नंदन श्याम सुंदर कृष्ण में क्या होगा? भक्ति हरो, उनमें जागृत होगी भक्ति। और आखिरी चीज वो कहते हैं तत्पुरुषेच्छ सत्य। अभी तत्पुरुष कौन है? जिनका ऐसे हरि में प्रेम है, मीन्स उनके भक्त, उनसे क्या होगा? मैत्री होगी, भक्तों से प्रीति होगी। हम प्रेम करते हैं सांसारिक लोगों से भी, लेकिन ऐसे श्रवण आदि के द्वारा केवल हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो कौन बन जाएगा? भगवान के प्रियजन, तदीयजन को कहते हैं, भगवान के जो भक्त हैं। इसी कारण से परीक्षित महाराज कहते हैं, अरे तुम्हें हार पहनने की बहुत इच्छा रहती है, माला पहनना चाहते हो, बड़ी बड़ी मालाएं, माला डाल के घूमना चाहते हो, तो इस माला को पहनो। कौन सी माला? तदेव हारम वद मन्यसे च, इस हार को पहनो। प्रभुपाद अपने ट्रांसलेशन में कहते हैं, यदि आप उचित, वो कहते हैं हारम भगवान के कार्यकलाप जिन्हें सुनना चाहिए और गले में माला के समान रखना चाहिए। इस प्रकार से वो प्रभुपाद इस शब्द का अनुवाद करते हैं। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज को महिमा पता थी, इसलिए वो बैठे सब कुछ छोड़कर, धन जन जल आदि को त्याग कर, रात दिन शुकदेव गोस्वामी के मुख से सुनने के लिए वो बैठ गए। क्यों? क्योंकि वो ग्लोरीज को जानते थे। इसीलिए हमें भी भगवान की ये जो महिमा है कृष्ण कथा की, उसको हल्का नहीं लेना चाहिए, उसको उसकी महिमा को समझना चाहिए। आचार्यों के द्वारा परीक्षित जैसे महान वैष्णव के माध्यम से, और उसमें अनुरक्ति बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से जैसे ही ये जो पिछली लीला थी, फिर ये दो श्लोकों के बाद वो तीसरे श्लोक में कहते हैं परीक्षित महाराज कि कृपया आप कृष्ण की बाकी लीलाओं का वर्णन करें। लगता तो है कि उन्होंने एक सर्वसाधारण बालक का अनुकरण किया जो इस मर्त्य जगत में है, लेकिन वो वास्तव में सर्वसाधारण नहीं है। और मुझे पता चला है आपसे, अभी अभी मैंने एक लीला सुनी है, पूतना का वध कर दिया, अद्भुत है। अब क्या करो, और नेक्स्ट आगे किसका वध किया उसके बारे में बताओ। तो जैसे ऐसे उत्साह वर्धक श्रोता के वक्तव्य को जब सुना परीक्षित महाराज ने, शुकदेव गोस्वामी ने, तो शुकदेव गोस्वामी से रहा नहीं गया, शुकदेव गोस्वामी बोलने लगे। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, फिर वो आगे की लीला का वर्णन करने लगे। और आगे की लीला कौन सी सुनाई उन्होंने? शकट बंजन। वो कहने लगे कदाचित कदाचित उत्थान कौतुक आप लवे। फिर एक विशेष लीला का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा कि कृष्ण अभी अभी तीन दिन के थे तो पुतना का वध किया, अभी तीन महीने के हो गए। कितने? तीन महीने के। और बालक जब तीन महीने का होने लगता है तो वो अपनी करवट बदलने लगता है, और उस समय एक विशेष संस्कार होता है जिसे कहते हैं, शुकदेव गोस्वामी इस श्लोक में कहते हैं औथानिक कौतुक आप लवे। औथानिक उसको सरल भाषा में कहा है उत्थान संस्कार। उत्थान मीन्स पलटना, बालक करवट बदलने लगता है, दशविध संस्कार है, तो ये उत्थान संस्कार भी है। जैसे ही भगवान ने करवट बदलना शुरू किया, तुरंत माता यशोदा ने सोचा फेस्टिवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्सव। और वैकुंठ का एक लक्षण है, हम कहते ना कुंठा से रहित है, हाँ, इसलिए तीसरे स्कंध में कहते हैं वैकुंठ मीन्स, जिसको एक शब्द में शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं अखंडित उत्सव, जहां उत्सवों का कभी खंडन नहीं है उसे वैकुंठ कहते हैं। इसी कारण से वहां सदैव आनंद है। तो माता यशोदा ने सोचा अभी मुझे उनका एक फेस्टिवल मनाना चाहिए। तो भगवान कृष्ण को सुबह सुबह, बाल कृष्ण को सुबह सुबह उन्होंने स्नान करवाया और सारी अड़ोस पड़ोस की स्त्रियों को बुलाया गया। ब्राह्मणों ने जो कहा था, ब्राह्मणों ने जो वर्णन किया था ये उत्थान संस्कार को कैसे मनाना है, उसके अनुसार माता यशोदा ने तैयारी की और वैसे ही किया। और वो एक विशेष दिन था, उस दिन चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र का योग था और उन्होंने सारे गवयों को बुलाया। गान होना चाहिए ना, उत्सव मीन्स गाना बजाना और प्रसाद पाना। तो बहुत सारे गवयों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने स्तुति गान की, गवयों ने कृष्ण के मधुर लीलाओं को गानों के माध्यम से गाया और माता यशोदा ने उस दिन भगवान को स्नान कराकर लाल कलर के वस्त्र पहनाए थे, सुवर्ण आभूषण उनको धारण कराए और उन्होंने गोद में उठाया, गोद में उठाकर अपने हाथों से उनके आंखों में काजल भरने लगी और गले में, आचार्य गण कहते हैं कि बाघ नख युक्त, हाँ, जो क्या कहते हैं उसको, एक हम काला धागा पहनते हैं ना लोग बचपन में, तो वैसे बाघ के नख होते हैं, हाँ, ऐसे तो उनके जैसे भगवान को बाघ नख युक्त एक विशेष माला पहनाई गई। और फिर उन्होंने सारे ब्राह्मणों को भोज आदि अर्पित किया और फिर ब्राह्मणों को वस्त्र दिए, मालाएं पहनाई, उनकी स्तुति की, उनका पूजन किया, उनको प्रणाम किया। और ये सब हो रहा था तब कृष्ण गोद में ही थे, कृष्ण को नींद आने लगी और इतने नींद अब भगवान कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। माता यशोदा ने सोचा अरे मेरा बाल कृष्ण मेरे गोद में हाथ में वो नींद ले रहा है, उसको कष्ट हो रहा है। तो वो वैसे ही वो उठी उस सारे कार्यक्रम में के बीच में से और वो गए और पालने में उनको लेटाया। पालना किसके नीचे था? शकट। शकट में से एक छोटा सा बैलगाड़ी जिसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ था, पीतल आदि के बड़े बड़े बर्तन रखे गए थे। और जैसे आप देखो सड़कों के किनारे लोग काम करते हैं तो अपने बच्चों को किसी चीज के झोली नीचे झोली बांध के रखते हैं, तो वैसे ही कृष्ण को शकट के नीचे रखा गया जहां भगवान बिल्कुल गहरे नींद में थे। और फिर माता यशोदा वहां से चली गई क्योंकि माता यशोदा को लगा कि आज विशेष उत्सव है। जो भी गोपी उस उत्सव में आ रही थी उस हर एक गोपी का पर्सनली माता यशोदा आदर सत्कार करते थे, सम्मान करते थे और जो भी गोप आ रहे थे उनका भी सत्कार कर रहे थे। और उस समय एक विशेष घटना घटी थी। क्या हुआ? जो कृष्ण है जो सबका रोना बंद करते हैं वो खुद जोर जोर से रोने लगे और उनकी रोने की आवाज वास्तव में कहते ओम की ध्वनि है। भगवान जब रोते हैं तो ऐसे भगवान जब रो रहे थे और यहाँ उत्सव का वातावरण में सब लोग मग्न हैं, स्तुतियां हो रही है, गाने बज रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहा है, किसी को कृष्ण का रोना सुनाई नहीं दे रहा था। भगवान अब सोचो वहां उसमें पढ़ते हैं दामोदर लीला में भगवान को गुस्सा आता है तो बहुत अधिक आता है। वहां गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया, उठ के गए, मुझे नीचे रखा, माता ने दूध नहीं पिलाया, स्तनपान नहीं किया, नीचे रखा और दूसरा दूध बचाने गई है दामोदर लीला में। इतना क्रोध आया, आचार्य गण कहते हैं कृष्ण ने एक पत्थर उठाया और जिस मटके से माता यशोदा दही का मंथन कर रहे थे और वो सारे गवों का था जो सुगंधित दूध दे रहे थे, हाँ, तो वहां उसको तोड़ डाला। और कहते कैसे तोड़ा, विशेषता थी वो तोड़ने की, एक तो अपने पाँव के नुपुरों की आवाज नहीं की, और जिस पत्थर से तोड़ा और वो इतना इतना युक्ति से तोड़ा कि वो टूटने के बाद भी वो घड़े से आवाज नहीं आई, नहीं तो माता यशोदा के कान बहरे थोड़े थे, उसको आवाज नहीं आती। ये कृष्ण की विशेषता है, कृष्ण की बाल लीलाएं रोमांचकारी है और वास्तव में मन को हृदय को और कर्णों को आनंद देने वाली है जब हम उसका मनन करते हैं। तो ऐसे कृष्ण ने सोचा इतना मैं रो रहा हूँ, कोई मुझे सुन ही नहीं रहा है, हाँ श्रवणम नहीं हो रहा है, कोई मुझे सुन नहीं रहा है, तो फिर वहां कृष्ण ने सोचा अभी कुछ करता हूँ। और एक कहते ना एक लाठी में क्या क्या है, दो को मारना, एक एक आघात में दो चीजों को खत्म करना। तो वैसे भगवान ने सोचा अभी कुछ करता, अभी इन सबको कैसे बुलाऊं। भगवान भी सबका आकर्षण अपनी ओर चाहते हैं। इस फेस्टिवल में उनके एक कोने में सुला दिया, सब लोग मौज कर रहे हैं। उन्होंने सोचा अरे मैं सर्वाकर्षक हूं, मैं सबका आकर्षण का केंद्र बिंदु मैं होना चाहिए। वो सब कहां क्या कर रहे हैं वहां, तो भगवान ने क्या किया। और दूसरी चीज सोची क्या कि ये जो शकट है, शकट उसके ऊपर एक आसुर था जिसका नाम था उत्कच, आसुर जिसका शरीर वायु युक्त था, वायुमय देह, मतलब उसको स्थूल शरीर नहीं था। उसने उस शकट का आश्रय लिया था, जैसे भूत प्रेत होते हैं उनके पास शरीर नहीं होता, वो क्या करते हैं आश्रय लेते हैं किसी मनुष्य का, फिर अपना कार्यकलाप करते रहते हैं। तो उसी प्रकार से इस आसुर ने क्या किया था, जो उस शकट का आश्रय लिया था उसके ऊपर बैठ गया था और शकट को तोड़कर या गिराकर सोच रहा था कृष्ण को मारो, नीचे कृष्ण है, तो वो सोच ही रहा था। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने सोचा अभी नहीं, बहुत टाइम हो गया, अभी इसको मारते ही हैं। हाँ, अब वास्तव में भक्तगण कहते हैं कि ये जितने भी आसुर हैं, ये कंस मामा जो खिलौने भेजा कर रहे थे, भगवान अभी पुत्र उनकी बहन को पुत्र हुआ है तो उस पुत्र को कैसे आनंद प्रदान करें, तो अलग अलग खिलौने भेजे जा रहे थे। पहले माता पूतना भेजी गई थी, उसको तो खिलौने को तोड़ दिया भगवान ने, अभी अभी तोड़ा था, अभी दूसरा खिलौना उत्कच शक्तासुर के रूप में। तो फिर भगवान ने सोचा इसी को भी तोड़ देता हूं, तो भगवान ने कैसे मारा होगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कृष्ण की वृंदावन लीला की विशेषता है, भगवान वृंदावन के बाहर किसी को मारना है तो पूरा शस्त्र अस्त्र लेकर तैयार हो जाते हैं। और यहां तो इनको मारते हैं, पुतना को कैसे मारा, केवल अपने ओठों का स्पर्श करके, संभव है, हाँ, इतने मुलायम, भगवान का हर अंग की तुलना किससे की गई है, कमल। भगवान पुतना को मारते हैं अपने सबसे मुलायम जो अंग है ओठ, उससे मार डाला। और यहां शक्तासुर को मारते, भगवान ने सोचा क्या करूं, चरण उठाता हूं, लेटे हुए है, अभी वो खड़े नहीं हो सकते, लेटे लेटे चरण ऐसे उठाया और वो जो शकट है, जो बैलगाड़ी आदि जो भी था, वो सारा टूट जाता है और वो आसुर भी मर के गिर जाता है केवल चरण कमल के स्पर्श से। ऐसे नहीं कि भगवान ने सोचा किक मारता हूं, बहुत जोर से किक भी नहीं मारा, आचार्य जन कहते हैं हल्के से ऐसे ऊपर किया, वो गिर के पड़ जा, गिर के मर जाता है और भगवान बहुत आनंदित होते हैं। और उसकी इतनी तेज आवाज होती है, सारे बर्तन आदि गिरते हैं तो सब लोग स्तब्ध हो जाते हैं, सारा उत्सव शाम, सब लोग दौड़ते हैं कृष्ण की ओर और देखते हैं क्या हो गया। माता यशोदा उनको क्या करती है, गोद में उठाती है और कृष्ण रोते जा रहे, अभी रोना बंद नहीं किया है उन्होंने, कृष्ण रोते जा रहे थे, तो उस समय माता यशोदा ने सोचा उसको स्तन पान कराती हूँ। बालक जब भयभीत है, रोता है और स्तन पान करके शांत हो जाता है तो सोचा जाता है कि ये ठीक है, अभी अभी कुछ आउट ऑफ डेंजर है। तो कृष्ण स्तन पान करने लगे और कृष्ण शांत हो जाते हैं, और कृष्ण कभी अपनी उपेक्षा सहन नहीं करते। यहाँ क्या किया था, उनके उपेक्षा की गई थी, तो फिर तुरंत ही कृष्ण की रक्षा के लिए और उनके हित के लिए नंद महाराज उनको गोद में लेकर यज्ञ आदि करते हैं, और ऐसे ब्राह्मणों को चूज करते हैं कि जिनके आशीर्वाद से क्या होगा, सब कुछ ठीक होगा। तो वहां नंद महाराज कहते हैं ऐसे ब्राह्मण होने चाहिए जो ईर्ष्या से मुक्त हो, अहंकार से मुक्त हो, झूठ से मुक्त हो, द्वेष से मुक्त हो, दूसरों का वैभव देखकर जिनको जलन होती है, और जो प्रतिष्ठा से मुक्त हो। ऐसे ब्राह्मण कुछ बोलते हैं तो वो उनका वचनों का लाभ है या उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और वो सत्य होते हैं। तो इस प्रकार से जब कृष्ण ने इस लीला को किया तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान इस लीला से स्थापित करते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मैं वास्तव में स्वयं भगवान हूं, जितने भी अवतार आदि हैं वो मुझसे ही निकलते हैं। कैसे स्थापित करते हैं, क्योंकि भगवान बलि महाराज के यज्ञ में जाते वामन देव के रूप में और उनको तीन पग भूमि चाहिए, तो उनको अपना पाव बहुत लंबा करना पड़ा। कृष्ण को मारने के लिए कुछ लंबा नहीं करना पड़ा शक्तासुर को, इसी कारण से कृष्ण क्या है, भगवान स्वयं। दूसरी बात वो कहते हैं, वो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिम्ह देव को विशेष रूप धारण करना पड़ा। तो ये सारे बाकी अवतार आदि है वो मूल नहीं है, लेकिन यहाँ कृष्ण क्या है, मूल विग्रह है, परम भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। तो भगवान ऐसे इस आसुर का वध करते हैं, और ये आसुर वास्तव में कौन, तुम्हें सोच रहा था कि सारे लोग भगवान के चरणों की कामना करते हैं, लक्ष्मी देवी तो चरणों को छोड़ना नहीं चाहती, कितना भाग्य है इस शकटासुर का, चरण उनकी ओर आ रहे हैं, हम चरणों की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन शकटासुर का भाग्य क्या है, स्वयं वो चरण उनकी ओर आ रहे हैं, और कैसे किक उनके ऊपर पड़ रही है। बल्कि अद्वैत आचार्य भी चैतन्य लीला में आता है कि चैतन्य महाप्रभु सदैव उनको मान सम्मान आदर देते थे, और अद्वैत आचार्य ने सोचा कब महाप्रभु की कृपा मिलेगी, उनके चरणों में स्थान मिलना चाहिए मुझे, वो मुझे प्रणाम करते हैं, वो स्वयं भगवान है। अद्वैत आचार्य ऐसा सोच रहे थे, उन्होंने सोचा कुछ करता हूं। अद्वैत आचार्य ने योग वशिष्ठ के ऊपर प्रवचन देना शांतिपुर में शुरू कर दिया, आपने भारिया सीता ठाकुरानी भी थी वहां, और वहां जो प्रवचन दे रहे थे चैतन्य महाप्रभु नवदीप में थे। उन्होंने सोचा शांतिपुर से ये ध्वनि कहां से आ रही है, मायावाद इको ध्वनि हो रही है नवदीप में, सबको पता चला आजकल अद्वैत आचार्य मायावाद के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, मायावाद के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं, सप्ताह कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का हाथ पकड़ते हैं, कहते नेताए चलो। उन्होंने गंगा में जल मारते हुए बीच में सन्यासी को मिलते हैं, उसका उद्धार करके महाप्रभु गंगा में जल मार के तैरते हुए शांतिपुर में निकलते हैं, और सही समय में पहुंचे जब क्लास हो रही थी। अद्वैत आचार्य प्रवचन दे रहे थे बड़े उत्साह के साथ, और वो भी महाप्रभु के विरोध में, कृष्ण के विरोध में, भगवान का कोई आकार आदि नहीं है, ब्रह्मलीन अवस्था आदि का वर्णन कर रहे थे, तो सहन नहीं हो रहा था। कृष्ण कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप में ट्रैवल वॉक कर रहे थे, देवानंद पंडित भागवत प्रवचन दे रहे थे, तो उस समय अचानक चैतन्य महाप्रभु कहने लगे ऐसा ही एक पागल व्यक्ति वहां प्रवचन दे रहा है बनारस में, प्रकाशानंद सरस्वती, जो मेरे शरीर को विदीर्ण कर रहा है, मुझे कांटों के भांति उसके शब्द चुभ रहे हैं, क्योंकि मायावाद बोल रहा था। तो वैसे ही महाप्रभु जब पहुंचे अद्वैत आचार्य प्रवचन दे रहे थे योग वशिष्ठ के ऊपर, महाप्रभु ने वहां जाके नहीं कि प्रणाम करके बैठ गए, नहीं, सीधा जाकर जो वक्ता था व्यास आसन पर उसकी कॉलर पकड़ ली, अद्वैत आचार्य के बाल पकड़े, हाथ आदि पकड़ कर घसीट कर नीचे ला दिए और लाठों से मारने लगे। अद्वैत आचार्य आनंदित होकर कहते हैं कि वास्तव में मैं आज धन्य हो गया, आज मेरा जीवन धन्य है, चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा मुझे प्राप्त हुई है। और वास्तव में महाप्रभु कहते हैं कि हमारा स्थान कहाँ है, भगवान के चरण कमलों में। आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवांगुधो, वो कहते हैं कि हे नंद तनुज कृष्ण, मैं पतित हो गया हूं इस संसार में, आप मुझे अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान कीजिए। और वही हमारी अवस्था स्थिति है, धूलि का कण बना लीजिए। तो इस प्रकार से हर कोई चरणों की कामना करता है, और यह कितना भाग्य है इस आसुर का, वही चरण कमल उसकी ओर आ रहे हैं। हाँ, ऐसे शक्तासुर वास्तव में पूर्व जन्म में नारद से राजा बहुलाश्व पूछते हैं कौन थे वो, तो वो कहते हैं कि हिरण्याक्ष का पुत्र था जिनका नाम था उत्कच। अरे उत्कच का बड़ा हट्टा कट्टा चौड़ा मोटा ताजा शरीर था, और इसको बड़ा घूमना अच्छा लगता था। अरे वहां वहां भ्रमण करता था जहां जहां मुनिगण तपस्या आदि में मग्न रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनको आदत ही रहती है दूसरों को डिस्टर्ब करने की, शांति, कोई व्यक्ति शांत है वो सहन नहीं होता है, प्रभु इतने शांत क्यों बैठे हैं। वैसे ही उत्कच के साथ था, हिरण्याक्ष का पुत्र, इतना मोटा चौड़ा हट्टा कट्टा शरीर। वहां लोमश ऋषि जिन्होंने सौ ब्रह्मा के जीवन देखे हैं, सौ ब्रह्मा अपने लाइफ टाइम में देखे हैं, ऐसे लोमश ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां पहुंचकर वहां, क्योंकि आश्रम का मतलब है जहां वृक्ष आदि हो, आजकल के आश्रम में तो बहुत सारे डिश एंटेना और सब कुछ लगा रहता है, लेकिन वहां वहां सारे वृक्ष, रमणीय वातावरण था, इतने सारे वृक्ष थे, लोमश ऋषि आदि सब वहां भजन कर रहे थे। ये पहुंचे और सारे वृक्षों को अपने शरीर से गिराने लगे, सारे वृक्षों को धराशायी कर दिया। लोमश ऋषि को गुस्सा आ गया, लोमश ऋषि से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा अरे दुर्बुद्धि व्यक्ति, इतना तुम्हारे शरीर का घमंड है, इतना मोटा ताजा शरीर है जिसको लेकर घूम रहे हो, शरीर का इतना अहंकार है, कहा तुम शरीर रहित हो जाओ। क्या हो जाओ? शरीर रहित, देह से रहित हो जाओ। अभी अब पानी पानी हो गया, तो शाप मिलता है तो सारे सबसे हम चुत हो जाते हैं, और वो उनके चरण में गिर पड़ा, इतने महान मुनि लोमश ऋषि के, और उनको कहा कि आप मुझे कृपा प्रदान कीजिए। तो उन्होंने कहा चाक्षुष मन्वंतर के बाद, चाक्षुष मन्वंतर तक, उसके बाद जो वैवस्वत मनु आएंगे और फिर 28वां द्वापर युग होगा, उसके अंत में परम भगवान कृष्ण प्रकट होंगे और उनके चरणों के स्पर्श मात्र से तुम्हारा उद्धार होगा, इस प्रकार से उनको कहा था। और ऐसा ये जो आसुर है, ये वास्तव में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि किसका प्रतीक है, ये प्रतीक है हमारे पुरानी गंदी आदतों का, बैड हैबिट्स, पुरानी गंदी आदतों का ये वास्तव में क्या है, प्रतीक है। तो ये उसको सूचित करता है, पुरानी बुरी आदतें और आलस, इन दो चीजों को ये, इन चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमें बहुत सारे पुराने आदतें हैं जो हमें बारंबार तंग करती हैं। हाँ, जैसे एक है कि अपशब्द बोलना, हमारा अपने वाणी पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता भक्त बनने के बाद भी। हाँ, ये वाणी से मधुर मधुर शब्द निकलने चाहिए, लेकिन भक्त बनने के बाद भी सोचा नहीं जाता कैसे कैसे शब्द कहाँ कहाँ से आते हैं अपशब्द। और फिर जो दूसरी चीज है कि जो निंदा करने की आदत है, वो ये सब पुरानी आदतें हैं, ये सब पुरानी आदतें हमारे ऊपर आ जाती हैं और जिनको छोड़ना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। हाँ, लेकिन ऐसे कृष्ण की लीलाओं को हम जब श्रवण करते हैं तो इन बुरी आदतें और जो आलसीपन है उससे हम मुक्त होने लगते हैं। और इसी चीज का भार हमारे सर पर है। हाँ, शकट के ऊपर जो भार था तो उसी प्रकार से इन पुरानी बुरी आदतों का आलसीपन का भार हमारे सर पर है। इसलिए भागवतम कहता है कोई राजा अपने सर पर मुकुट धारण करता है और वो मुकुट धारण करके कृष्ण के चरणों में नतमस्तक नहीं होता तो वो जो मुकुट है उसके लिए भार है और उसी के कारण वो इस संसार में डूबेगा। वो मुकुट ही उसको क्या करेगा, डुबो देगा। उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में सोचते हैं कि मैं बड़ा महान हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हूँ, मैं समाज परिवार के आदि जिम्मेदारी का वहन करता हूँ। इस प्रकार से हम अपने आप को इस भार को धारण करते हैं और इस संसार सागर में डूबने लगते हैं। लेकिन वास्तव में एक भक्त है वो किसी चीज का भार धारण करता है अपने जीवन में तो वो एक चीज का कृष्ण की सेवा का भार अपने ऊपर धारण करना। जब कृष्ण की सेवा का भार हमारे ऊपर धारण करेंगे तो ये जो दो चीजों का भार है, पुरानी बुरी आदतों का, आलसीपन आदि का, वो हमसे क्या होने लगेगा, छूटने लगेगा। इसलिए अनंत देव, भगवान अनंत देव पृथ्वी का भार, पृथ्वी को एक प्रकार से धारण करते हैं और कृष्ण लीला का गुणगान करना, ये भार उन्होंने अपने जीवा पर रखा है। इस कारण से जो भगवान अनंत देव है सदैव कृष्ण का गुणगान हम कर पाते हैं। तो ऐसे स्थिति के कारण, इन पुरानी आदतों के कारण व्यक्ति के अंदर ये भावना आती है कि मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है, सफलता का कारण कौन हो, मैं ही हूं। तो इस प्रकार से भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं कि ऐसे जो अनर्थ है वो चले जाते हैं जब हम कृष्ण की इन विशेष लीलाओं को सुनते हैं और सरलता से उनके प्रति आकर्षण जागृत करते हैं। समय तो हो गया, मैं सोच रहा था तृणावर्त का वध भी श्रवण करें, लेकिन 9 बज गए हैं तो आगे हम कभी चर्चा कर सकते हैं तृणावर्त के बारे में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तृणावर्त का वध भगवान ने किया था, भगवान का पहला जन्म महोत्सव था, फर्स्ट जन्माष्टमी, भगवान अभी 1 साल के हुए थे। तो बड़ा फेस्टिवल मनाया जा रहा था, माता यशोदा ने कृष्ण को गोद में उठाया, उनको स्तनपान करा रहे थे और स्तनपान करते करते कृष्ण के दिमाग में बात आ गई। कृष्ण ने सोचा अरे आसुर आ रहा है कोई, अभी बवंडर के रूप में एक आसुर आने वाला है। कृष्ण को पता चला, माता का स्तनपान कर ही रहे थे तो भगवान ने सोचा आसुर आ रहा है, तो उसी गोद में भगवान इतने भारी हो गए कि सुखदेव गोस्वामी इस लीला का वर्णन करते हुए भागवत में कहते हैं मानो पर्वत के भांति कि माता यशोदा ने कितनी कोई गिरिराज गोवर्धनी उठाया हो। आगे चलकर यशोदा कहती है, किसी गोपी ने पूछा अरे क्या पगली क्या हो गया तुम्हें, अपने बालक अकेला एक इतने सालों के बाद पुत्र हुआ है उसको भी ऐसे फेंक दिया। हाँ, वो कहते कि ये कृष्ण ऐसे लग रहा था गोवर्धन से भी भारी, ऐसे यशोदा माता कहती है। तो उनको इतना भारी लगने लगे कृष्ण, तो माता यशोदा को लगा कि कोई भूत तो नहीं इसके अंदर चला गया, तो उन्होंने सोचा उसको भी रख देती है, नीचे रख देती है, कृष्ण भी फ्री हो गए। भगवान हमेशा चाहते आसुरों से माता पिता ब्रजवासियों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, मैं अकेला उनसे फाइट करूंगा। तो माता यशोदा ने उनको आंगन में रखा, वो चले गए अंदर, अभी वो आसुर आ गए, उन्होंने देखा तृणावर्त ने देखा अकेला है, तो उन्होंने बवंडर के रूप में था, झंझावात बवंडर के रूप में था, उनको उठाया। और कृष्णा जब गोद में थे तो सोच रहे थे मुझे ना थोड़ा ऊपर उठना है, ऊपर जाना है, जैसे बच्चों का हम ऐसे गोद में लेके ऐसे ऐसे करते हैं ना माता है, अभी कृष्ण सोचने लगे ये यशोदा कहां तक ऐसे ऊपर उठाएगी, मैं तो बादल को चुना चाहता हूँ। आज उनकी इच्छा हो गई थी बादलों का स्पर्श करो, तो उन्होंने सोचा चलो इसका इस्तेमाल करते नया खिलौना, उसका इस्तेमाल करके बादलों को छूते। तो तृणावर आते हैं और उनको ऊपर ले जाते हैं, और ऐसे तृणावर जब उनको ऊपर ले जाते हैं बवंडर के रूप में, तो वो सोचते कि ऊपर से पटका दूंगा कृष्ण को, लेकिन कृष्ण ने अभी पटकने के बाद दूर कृष्ण ने उनका गला पकड़ लिया था, यहाँ बैठ गए थे। कहा कृष्ण एक बार पकड़े तो छोड़ेंगे नहीं। पूतना लीला में माता पूतना भोग लगा रही थी दूध का, नहीं अभी हम दूध का भोग लगाते तो कम से कम 5 मिनट तो रखते है ना। माता यशोदा कहते नहीं, माता यशोदा नहीं, पूतना ने अभी अभी दूध का भोग लगाया था, और वो कहती अभी भोग हटाना है तुरंत। कृष्ण कहते नहीं यारे वेट करो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा। तो उसी प्रकार से तृणावर्त को भी पकड़ा भगवान ने और उन्होंने छोड़ा नहीं, और भगवान ने उनका गला दबाया। यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कर कमल, अपने कर कमल कमल के भांति करों से उंगलियों से उनको मारा, पहले ओठ बाद में चरण, और अभी तीसरे आसन को कैसे चरणों से चरण कमल से। तो ऐसे आसुर का वध किया और वो नीचे आकर गिरता है, और फिर गोपियां दौड़ती है कृष्ण की रक्षा हो जाती है। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं ये जो आसुर है अहंकार रूपी अनर्थ को प्रकट करता है, और दो प्रकार वैसे ये जो अहंकार है इसका मेनली ये प्रतिनिधित्व करता है, और विशेष रूप से कौन सा अहंकार, कई प्रकार के अहंकार है। प्राइड ऑफ लर्निंग, हाँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता विद्वान हूँ, इसका जो अहंकार है वो सबसे अधिक पतनशील है। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं किसी व्यक्ति का इंद्रिय विषयों से पतन हो जाए वो इतना बढ़कर नहीं है, उससे वो उठ सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति विद्वता से फिलोसॉफिकल फॉल डाउन उससे पतन हो जाए तो वो कृष्ण भावना से उस अधोगति से कोई भी उसे बचा नहीं सकता। तो इसका वर्णन वो करते हैं विस्तृत रूप से। तो ऐसा अहंकार से हम हमेशा भरे रहते हैं, ऐसे अहंकार से मुक्त होना है तो हमें तृणावर्त के लीला को सीखना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, समझना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के कृष्ण लीलामृत के श्रील प्रभुपाद के नित्य गौर प्रेमानंदे।